आत्मभावना लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्,
नमो लोए
सर्वसाहूणम्। येनात्मा बुद्धयतात्मैव परत्वे नैव चापरम्, अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः।
ये आत्मभावना नामक शास्त्र है जो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन है समाधि तंत्र ग्रंथ के ऊपर। समाधि तंत्र तो पूज्यपाद आचार्य का ग्रंथ है और उसमें जीव को अपने समाधि के ने आत्मा को पहचान कर उसमें स्थिर होकर मोक्ष प्राप्त करने की पूरी विधि बताई गई है। अभी हम आए हैं 36 पृष्ठ पर। 8 और 9 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था, समाधि तंत्र में से भी पढ़ा था और कल यहाँ पर भी हमने पढ़ा था। अब उससे नीचे पढ़ेंगे, वहां से जो अविद्वान जीवनी मान्यता, अविद्वान ने अज्ञानी बहिरात्मा अंतर्मुख थईने जे अतीन्द्रिय आत्मा ने नथी जानतो ने देहादी ने आत्मा माने छे, ते भले गमे तेटला शास्त्रो भण्यो होय तो पण अविद्वान छे, मूर्ख छे, मिथ्या दृष्टि छे। मात्र वो बाह्य केवल पढ़ने मात्र से नहीं होगा, अंतर्मुख परिणति में ही आत्मा समझने आत्मा को जानेगा। अतीन्द्रिय आत्मा को जानना है तो आत्मा अतीन्द्रिय है तो इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा। अतीन्द्रिय आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानने में आ जाएगा, ये बात बता रहे। और ये तो मात्र इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थों को, भले वो शास्त्र भी क्यों न हो, बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया है परंतु अंतर्मुख परिणति नहीं है, तो अभी तो उसको अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव नहीं। ज्ञान ज्ञान होता है वही तो अतीन्द्रिय होता है। इंद्रियों के माध्यम से जब हम कहते हैं तो उसको पर पदार्थों को, पुद्गल को जानता है, क्योंकि पुद्गल को जानने के लिए अभी छद्म सजीवों को, पुद्गल को जानता है इंद्रियों के माध्यम से जानता है उसको, वो भी ज्ञान तो आत्मा का ही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है, फिर भी उसको इंद्रिय ज्ञान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियों का निमित्त बनता है। इंद्रिया कुछ नहीं जानती है, ज्ञान ही जानता है, परंतु इंद्रियों के द्वारा लक्ष्य किसका कर रहा है, पर पदार्थों का, बाह्य विषयों का। और अपने को ही जानना है तो इंद्रियों के थ्रू फिर बाहर उसके देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान स्वयं ज्ञान को जानता है। अपन मन भी इंद्रिय ही है ना, वो भी मन उसी में आ गया। जैसे मति ज्ञान के भेद करते हैं तो 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जिन जिन पदार्थों को जानते उसकी बात कहते, फिर अवग्रह यह अवाय धारणा होते हैं, फिर 12 प्रकार के विषय होते हैं, उसमें कितनी बातें हैं। तो वो तो बाह्य पदार्थों के बारे में, क्योंकि मन के द्वारा भी किसको जानेगा, जाने हुए को और जानेगा, या अपनी मति कल्पना से कुछ काल्पनिक जानेगा, अपने को ही जानता है। स्वसंवेदन आत्मानुभूति कहू ना, अंतर्मुख परिणति से अतीन्द्रिय। वेदन आएगा ही, अपना लक्ष्य किया तो उसको वेदन जरूर आएगा। जब तक अपना लक्ष्य नहीं होता है तो वो वेदन में भी अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कहो, अनुभव कहो, नहीं हो रहा है, इसको हम स्वानुभव कह रहे हैं।
देखो मिली भाई, आपका जो सवाल है पहले में पहले जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले जितने जीव है उनके पर को जानने में इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता है, यानी मीडिया सहायता, यानी नथिंग एल्स
आवश्यकता है ना, वो निमित्त है वहाँ,
यानी वो निमित्त है, उसके कारण उसके बिना वो नहीं जान पाएंगे। इसलिए ऐसा भी कहने में आता है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, ख्याल में है ना। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब जीव अपने स्व का अनुभव करता है तब स्व का अनुभव में उसको कोई इंद्रिय काम नहीं आती, उस समय उसका जो अनुभव है वह जिसको हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष है, उसमें इंद्रिय मन वगैरह कुछ नहीं करते। इसलिए आत्मा का अनुभव इंद्रियातीत है, वचनातीत है, नयातीत है, ये कहने के पीछे का प्रयोजन ये है।
वो भी मति शुद्ध ज्ञान से ही जाना जाएगा।
हाँ, अवधि और
क्योंकि उसके मन मति शुद्ध ही है, अभी केवल ज्ञान तो है ही नहीं है, और अवधि मन परे का तो ये आत्मा अभी उसका तो विषय नहीं है, समझ में आती है ना बात। तो ये जो मति शुद्ध ज्ञान है वो उस समय प्रत्यक्ष कहेंगे, किस अपेक्षा से प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष, वो तो वो परोक्ष ही होता है, जिसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, जैसे हम कहते हैं ना, वो प्रत्यक्ष नहीं, वो तो कह देते हैं कहने के लिए, परंतु वहाँ तो वो इंद्रिय मन के द्वारा, यहाँ तो अभी तो वो विषय किसको कर रहा है, इंद्रिय और मन के द्वारा विषय किस पर पुद्गल को, ये बात कह रहे। ये पृष्ठ संख्या आत्म भावना पुस्तक निकालना है, 8 और 9 नंबर का श्लोक, उसके नीचे का प्रवचन हम पढ़ रहे हैं, 2 लाइन हो गई थी कि भले उसने कितने भी शास्त्र पढ़े क्यों ना हो या पढ़ रहा है, फिर भी वो अविद्वान है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि। पहला एम कहूं कि ज्ञान ने स्व सन्मुख करीने जे पोताना आत्मा ने नथी जानतो ते पोताना शरीर ने ज आत्मा माने छे, अने ए रीते जे पोताना शरीर ने ज आत्मा माने छे ते बीजा मा पण मनुष्य देव वगैरे ना शरीर ने आत्मा ज माने छे, एटले देह तथा आत्मा ने अभेद माने छे। जैसे अपने को वो देख रहा है ऐसा ही सामने वाले जीवों को शरीर रूप से ही देखता है, वो शरीर रूप ही है, वो उससे वो उसका आत्मा भिन्न है, ऐसे उसको ज्ञान नहीं है। जे जीव बाह्य दृष्टि वालो अविद्वान छे ते नर देह मा रहेला आत्मा ने नर माने छे, नर एने मनुष्य। एज प्रमाणे तिर्यंच शरीर मा रहेला आत्मा ने तिर्यंच माने छे, ऊपर आए थे ना श्लोक में तिर्यंग अंगस्थम। देव शरीर में रहेला आत्मा ने देव माने छे, यानी उस शरीर को ही वो देव मान रहा है, शरीर को ही वो सामने वाला जीव मान रहा है। तथा नारक शरीर में रहेला आत्मा ने नारक माने छे, परंतु आत्मा तो ते देह थी जुदो, और कैसा देखो अभी उसका आत्मा का वर्णन कर रहे, अनंतानंत ज्ञानादि शक्ति संपन्न, अनंतानंत धी शक्ति ही बताया था, धी यानी ज्ञान, तो अनंतानंत ज्ञानादि शक्ति संपन्न है, आदि में सभी उसके गुण ले लेना। और कैसा है तो स्व संवेद्य, स्वयं अपने अनुभव में आवे ऐसे है, ऐसी शक्ति उसी में पड़ी है। अचल स्थिति वालों छे, एक बार मुक्ति प्राप्त की तो अभी फिर वापस उसमें संसार में जन्म मरण करने के लिए फिर दोबारा भव धारण नहीं करता, क्योंकि तेने ते जानतो नहीं, यानी ऐसा वैभवशाली है स्वयं, उसको नहीं जानता है। शरीर तो टूंकी मुदत वालू जड़ छे, टूंकी मुदत वालू क्यों कहा, शरीर जो धारण किया वो एक भव पूर्ता धारण किया है, फिर उस शरीर से जो संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है, क्योंकि वो भी जो जितना आयु कर्म बांध के आया है निमित्त तरीके से, वो जो शरीर की स्थिति भी उतनी होती है। कर्म के साथ संश्लेष संबंध है, हाँ, और ये शरीर के साथ अभी तो इस बहुपुरता संबंध है, एक क्षेत्रावली तो कर्म को भी कहते हैं, संयोग अभी एक बहुपुरता संयोग है। हाँ देखो, कर्म के साथ संश्लेष इसलिए कहते हैं कि वो भवन भवन तक चलता है, एक भव से दूसरे भव में भी कंटिन्यूएशन रहता है, और इसका तो एक भव के लिए एक संबंध है, उसी को मर्यादा का है, उसी को मर्यादा कहा। कर्म की ना, हाँ है ना, जो जिस समय जितनी बंदी है, तो जैसे हम कहेंगे मिथ्या तो की कितनी, मैक्सिमम तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उससे ज्यादा वो परमाणु नहीं रहेंगे। हाँ, जो पर्याय प्रवाह की अपेक्षा से नए नए बंध होते हैं तो उनकी सत्ता बनी रहेगी, जब तक सम्यक तो प्राप्त कर नहीं करता है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर उनका सत्ता में से नाश नहीं करता है, तो उनकी सत्ता बनी रहेगी। अब यहां तो ये बात हो रही है कि वो स्वयं इतना शक्ति संपन्न है, स्वयं के अनुभव में आवे ऐसी उसी में शक्ति पड़ी है, स्वसंवेद्य, अनुभव में नहीं आवे ऐसी बात ही नहीं, वो स्वयं अपने अनुभव में आते ऐसी बात है, और अचल स्थिति वाला है तो उसको नहीं जानता। तो शरीर कैसा है, तो मर्यादा है उसकी, उसकी मुदत नक्की है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आया है इस बहुपुर का। और जड़ है, दूसरी बात क्या है, जड़ है, वो कुछ नहीं जान रहा है, वो नहीं कह रहा है मैं तुम्हारा हूँ। ने आत्मा तो सरंग स्थिति वालों, देखो ये तो अनादि अनंत एक ही आत्मा है, और वही अनेक अलग 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद शरीरों को धारण करता है, जिस भाव में जा रहा है वो उस रूप में हुआ, उस रूप में हुआ, क्योंकि पहले की कुछ याद नहीं है, मेरा जन्म हुआ, मैं इतना बड़ा, फिर ये मेरी इतनी ही आयु है, इसके लिए मुझे ये कर्तव्य है, ऐसा कब कितनी बार किया, दो चार बार किया होगा ना, चल ही रहा, अनंत अनंत बार यही चल किया उसने, यानी कितनी बार तो मनुष्य हुआ, कभी देव हुआ, कभी नारकी हुआ, तिर्यंच, ये तो इन्हीं में तो घूम घूम रहा है, कभी उसको सुनने को नहीं मिला ये बात थोड़ी है, हाँ सुना है समझा नहीं, तो कहते इसमें कायम वही का वही तो आत्मा है, शरीर तो नित्य नए नए, अभी ऐसा भी देखेंगे तो इस भव में भी हमने आपको बताया था, ये शरीर के परमाणु भी हर समय नए अनंत आते हैं, कुछ मरण के समय तक कुछ न कुछ पड़े रहते हैं और बाकी तो निकलते भी रहते हैं, जैसे कर्मों में चलता रहता है, नए नए आते हैं, पुराने निकल जाते हैं, शरीर के भी ऊपर उसकी सबकी अंतिम मर्यादा कितनी है, जितनी आयु लेके आया उतनी, इसलिए कहते टूकी मुदत वालो जड़ छे, ने आत्मा तो सड़ंग स्थिति वालो चैतन्य शक्ति संपन्न छे, चैतन्य शक्ति यानी वो तो जी रहा है, जीना ही उसका स्वभाव है, तो कायम है और केवल है ऐसा नहीं, वो तो चैतन्य शक्ति युक्त है, एम और वो जड़ था ना, ये चैतन्य शक्ति वाला है, एम बनने नी भिन्नता ने अज्ञानी ओळखतो नथी, पहले तो हमने कल देखा था ना ये अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज क्या क्या था याद है, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का आप नहीं थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा तो है ना, याद है कि भूल गए, कल नहीं थे, बोलो बोलो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, हाँ, अनादि निधन वस्तु आप है। अब शरीर के लिए क्या कहा था, मूर्तिक पुद्गल का पिंड बताए, यानी अनेक पुद्गल है वहां, नवीन ही जिसका संयोग हुआ है वो अनादि निधन था, ये प्रसिद्ध ज्ञानादि से रहित है, वो तो अनादि निधन था, ये नवीन ही संयोग जिसका हुआ ऐसा है, ऐसे कौन है, तो ये पुद्गल है, वो सारी जड़ है, अचेतन है, देखो यहाँ तो बार बार आचार्य कहो, ज्ञानी कहो, हमारे गुरुदेव कहो, आत्मा की अनंतानंत शक्तियों की कितनी बात करते हैं, भगवान आत्मा करके पुकारते हैं, वो कितनी बार याद आता है, पर 10 साल पहले किसी ने मेरा इंसल्ट किया था वो कितनी बार आता है यार, वो कितना चुभा अंदर जाके, है ना, निकल नहीं रहा, और ये भगवान आत्मा ये तो रोज सुनते हैं, रोज भूल जाते हैं, वो अंदर हाँ, वो गुस्सा नहीं है अंदर, बाहर के बाहर चला जाता है। ऐसा नहीं लगता अरे ये मेरा वर्णन चल रहा है, मेरा वर्णन चल रहा है। अभी किसी को फोटो दिखाओ, कभी 4 साल पहले निकाल, एकदम जिज्ञासा पूर्वक देखता है ना, और ये हमारा वर्णन चल रहा है ऐसा नहीं लगता है, आत्मा का होगा कोई किसी के। हाँ, तो कहते भिन्नता ने अज्ञानी ओळखतो नहीं, अने ए प्रमाणे चिदानंद शक्ति संपन्न आत्मा ने जो ओळखतो नहीं, अपने स्वयं को, आत्मा यानी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, चिदानंद चैतन्य शक्ति संपन्न ऐसा जो स्वयं है और अपने को ही नहीं पहचानता है, ते भले शास्त्रों भणेलो मोटो विद्वान गणा तो हो तो पण खरेखर ते अविद्वान छे, चैतन्य विज्ञानी विद्यानी तेने खबर नहीं। अंतर मां मारो आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप अति इंद्रिय भगवान छे एम जे नहीं जानते, मारो आत्मा लिखा वहां पर, आत्मा का अर्थ ही होता है मैं स्वयं। तो कहते अंतर मां मारो आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप अति इंद्रिय भगवान छे एम जे नहीं जानते, ते मूढ़ बहिरात्मा बाहरना जड़ शरीर ने ज आत्मा माने छे, यानी वो तो इंद्रियों के द्वारा बाहर ही बाहर उसका उपयोग भटकता रहता है और इस शरीर को ही आत्मा मानकर बैठा है, शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता है। आ मनुष्य देह मां रहेलो आत्मा तो मनुष्य देह थी जुदो ज्ञान स्वरूप छे। ये जो चित्र यहां बनाया था ना, एक ज्ञायक भाव हूं, परंतु क्या मानता है, हूँ देव हूँ मनुष्य हूँ तिरियंच हूँ नारक। तो ज्ञानी पोताने शरीर थी भिन्न एक ज्ञायक भाव पणे अनुभवे छे, और अज्ञानी पोताने देव मनुष्य तिरियंच नारक पणे अनुभवे छे। अनुभव उसको किस रूप से एक्सपीरियंस कर रहे अपना, ये कह रहे। अब अपना वाक्य पूरा करेंगे। मूळ बहिरात्मा बाहरना जड़ शरीर ने आत्मा माने छे, आ मनुष्य देह में रहेलो आत्मा तो मनुष्य देह थी जुदो ज्ञान स्वरूप छे, तेने न ओळखता आत्मा ज मनुष्य छे एम शरीर ने ज आत्मा मानी रह्यो छे, जाणनार स्वरूप आत्मा ने जाणतो नथी तेने धर्म बिल्कुल थतो नथी। एक ही लाइन में बराबर बता दिया कैसा है आत्मा, जाणनार स्वरूप है, ये पूरी दुनिया को भी जो जान रहा है, निर्णय कर रहा है, जो कुछ सोच रहा है, ये जो इंद्रियों के द्वारा भी जो जानने का कार्य कर रहा है, वो तो है तो स्वयं आत्मा, इंद्रिया तो जड़ है वो क्या जानेगी, जानने वाला तो आत्मा ही है। ऐसे जानने जानना ही जिसका स्वरूप है, ऐसे आत्मा को ही नहीं जान रहा है, उसको धर्म बिल्कुल नहीं होता। हाथी नु शरीर जुए त्या आ जीव हाथी छे, आत्मा ने हाथी वगैरह तिर्यंच रूप माने छे। देव शरीर में आत्मा रहो त्या आत्मा जाने के देव शरीर रूपे थई गयो एम अज्ञानी माने छे, अने एज प्रमाणे नारक शरीर में रहेला आत्मा ने नारकी रूप माने छे, पण आत्मा तो अरूपी ज्ञान आनंद स्वरूप छे एम अज्ञानी जानतो नथी। आत्मा तो देहती तद्दन भिन्न छे, जुदा जुदा शरीरों धारण करवा छता आत्मा पोताना चैतन्य स्वरूपे ज रह्यो छे, चैतन्य स्वरूप थी छूटी ने जड़ रूप कदी थयो ज नथी। देखो इस जीव ने अनादि से कितने कितने शरीर धारण किए होंगे, है ना, अनंत काल तो कभी निगोद में रहा या कभी बाहर भी आया, तो कभी अग्निकायिक हुआ, जलकायिक हुआ, वायुकायिक हुआ, एक इंद्रिय में से कभी विकलेन्द्रिय हुआ, पंचेन्द्रिय भी हुआ, मनुष्य तिर्यंच देवनारकी में भी पंचेन्द्रिय होकर घूमा है। तो कहते हैं वो तो शरीर से तो भिन्न ही था, एक ही जो जीव है वही उन सभी में था, देह धारण कर करके छोड़ रहा है, फिर दूसरा धारण किया छोड़ रहा है, जीव तो वही का वही है और वो चैतन्य स्वरूप है। शास्त्र में ऐसा भी उदाहरण आता है ना कि जो दिया हाथ में लेकर अन्य अन्य ओरडे ने अन्य अन्य रूम में से पसार हो जाएंगे तो वहाँ वो अलग अलग रूम प्रकाशित होती चली जाएगी, दिया तो वही का वही है ना। ऐसे ये एक ही जीव है, अन्य अन्य शरीरों में से धारण कर करके छोड़ता है वो जानने का कार्य तो जीव का अपना है, जीव के लक्षण भिन्न है, शरीर के लक्षण भिन्न है, फिर भी ये जो जड़ शरीर ही मैं हूँ ऐसी बस उसकी मान्यता है, उसके लिए किसी ने सिखाया नहीं उसको ये तू है करके, स्वयं ही उसकी नैसर्गिक ऐसा ही मान्यता अनादि से चली आ रही है। अग्रहित मिथ्यात्व है, शरीर ही मैं हूँ ऐसी मान्यता है, और जैसे अपने को शरीर रूप मानता है वैसे सामने वाले को भी मानता है। यहाँ क्या कहा, जुदा जुदा शरीरों धारण करवा छता इन स्पाइट क्या हुआ, आत्मा पोताना चैतन्य स्वरूप रहो छे, चैतन्य स्वरूप थी छूटी ने जड़ रूप कदी थयोज नहीं, कभी हुआ भी नहीं है, होने वाला भी नहीं है, फिर भी इसकी जो मूर्खता है, अज्ञान है, अज्ञानता है, इस कारण और भी नए नए शरीरों को धारण करता रहता है, और अगर नए नए शरीरों को धारण करता रहता है, उस रूप अपने को मानता है, दुखी दुखी होता रहता है, तो इसमें से छूटने का उपाय क्या है, तो जो स्वयं का स्वरूप है उस रूप अपने को मानना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, शरीर भले वहां रहे वो आपको कुछ नुकसान नहीं कर रहा, नारकी का शरीर नुकसानदायक है कि देव का, शरीर मैं हूं ये मान्यता हमारे लिए नुकसान, और वो जीव की मान्यता है, जीव में है, जीव ने की है, तो जीव ही वो मान्यता छोड़ सकता है, शरीर कोई भी हो उससे कुछ नहीं लेना देना, संयोग कुछ भी हो उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं उनसे भिन्न हूं, मैं तो जानने वाला हूं, ये अगर एक बात नक्की करते हैं तो संयोग भले कितने भी प्रतिकूलता भी क्यों ना है, ज्ञानी तो उसमें कुछ उसको ऐसा जो हाँ चलायमान नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने स्वरूप निश्चित कर लिया है ना, आत्मा पोते तो ज्ञान स्वरूप छे, ते कई मनुष्य वगैरह देह रूप थयो नथी, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे एक पुद्गल भी दूसरे पुद्गल रूप नहीं होता है, तो ये जीव स्वयं पुद्गल रूप हो जाए देह रूप हो जाए ये बात कहां से आई, मनुष्य तीर्यंच देव नारक एवा नाम तो आ शरीर ना संयोग थी छे, कर्मनी उपाधि थी रहित आत्माना स्वरूप ने जुओ तो ते ज्ञान आनंद स्वरूप छे, कर्मना उपाधि थी रहित ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कर्म के उदय में जैसे हम नाम कर्म के उदय में इस शरीर की रचना हुई है, ये निमित्त सही है, और फिर वो अन्य संयोग भी उसके मिले है, ज्ञान दर्शन की भी हीनी अवस्था हो रही है, उसकी राग द्वेष भी हो रहे, ये सब क्या है, कर्म के उपाधि है, इनसे रहित देखो तो, हमने कर्णान योग परिचय पुस्तक में बहुत बार ये विषय लिया है, आठों कर्मों के उदय में क्या क्या बातें बनती है, तो ज्ञानावरण के उदय में यहाँ ज्ञान की हीनता हो रही है, दर्शनावरण के उदय में दर्शन की हीनता हो रही है, मिथ्यात्व के उदय में तो यहाँ विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व हो रहा है, चारित्रमों के उदय में राग द्वेष हो रहे हैं, अंतराय के उदय में जो पुरुषार्थ की हीनता हो रही है, और ये तो हमने यहाँ देखे जीव के गुणों की बात है, यानी अभी इससे रहित हमें देखना है, कर्म के उदय से रहित, कर्म का उदय होते हुए उससे रहित अपना स्वरूप कैसा हमको ख्याल में लेना है, कर्म का उदय मिटाना वगैरह वो तो अपनी बात नहीं, वो तो कर्म अपने से भिन्न ही है, तो उसके उदय में होने वाली बात हम मैं हमेशा कहती हूँ दो खाते खोलना, ये कर्म के खाते में रखना और बाकी अपना स्वरूप इससे भिन्न कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, कि जीरो रहेगा, क्या रहेगा, देखो ये ज्ञान की हीनता तो हमने वहां डाली, तो यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन वो सारे हमारी शक्ति, सम्यक तो हमारी शक्ति है, पूर्ण वितरकता हमारा स्वभाव है, ये जो अनंत जिसको हम कहेंगे वीर्य ये हमारा स्वभाव है, तो ये सब स्वभाव हमारा है वो हम है वो हमारा है, वो कर्मोपाधि से रहित हमारा स्वभाव है, अघाती कर्मों के उदय में तो मेजोरिटी तो सारे वो उसी में संयोगों में शरीर में आयु की स्थिति में आदि बातें होती है, हम तो उनसे रहित ही है, हम कहते किसी ने आपके पास कुछ धरोहर रख दी तो अपने ये मेरा ही माल है ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, चोर कहलाए, कर्म के उदय में जो जो चीजें मिल रही है या जो कोई संयोग रूप में है वो भले आपके पास है, क्योंकि वो तो कोई ले जा नहीं सकता जब तक उसका उदय चल रहा है, उसको अपनी मत मानो, जितना अपना है उतना अपना मानो। अरे अपना तो इतना सब है, अनंत शक्ति युक्त है, वो थोड़ी थोड़ी अनुकूलताओं के ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है मान लेते, यानी कोई चक्रवर्ती है उसके पास इतना वैभव है और किसी ने उसको कुछ छीन दी, ये मेरी संभालो मैं जा रहा हूँ, वो मेरी है करके बैठेगा, तो ऐसे हमारी परिस्थिति है। तो किसी कर्मनी उपाधिति रहित आत्माना स्वरूप ने जुओ तो ते ज्ञान आनंद स्वरूप छे, यानी पूरा वितरागी सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है। वितरागी कहने से तो पूरा अनंत ज्ञानमय हो जाता है ना, और आनंदमय, और अनंत ज्ञान भी है, सर्वज्ञता मेरा स्वभाव है। तो ये अपने स्वभाव में यानी जो गुण है वो परिपूर्ण है ही, सामर्थ्य तो परिपूर्ण है, तो ऐसा मैं हूं उसको कहेंगे कर्मोपाधि से रहित। आत्माना स्वरूप ने जो तो ते ज्ञान आनंद स्वरूप अच्छे, मनुष्य वगैरह शरीर के तेनी बोलवा चालवानी क्रिया ते काई आत्मा नथी। हमने उतना ही मान लिया कि ये शरीर मैं हूं, और शरीर का हाथ टूट गया तो हाँ, ये पैर टूट गया, मैं लंगड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, ये इन्हें उतना ही अपना स्वरूप मान लिया। अभी बोलने चालने मैं खत्म हो गया, वो तो अत्यंत भिन्न पदार्थ है, फिर वो मैं खत्म हुआ, किसी का पुत्र हो गया, मैं मर गया, यानी ये उसकी सारी मान्यता है, उसके कारण वो स्वयं ये कल्पना का दुख खड़ा करके रोता रहता है। हाँ, तो कहते बोलवा चालवानी क्रियाते कहीं आत्मा नहीं, मान लेते अभी बोलना बंद हो जाए, किसी का बोल नहीं सकता, आवाज नहीं आ रही, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि गले में कोई तकलीफ हो गई, बोल नहीं सकता है, तो क्या मानता है, अरे मैं तो अभी हीन दिन हो गया है ना। चालवानी क्रिया, चलने में तकलीफ है, अभी पैरालिसिस हो गया, चल नहीं सकता, तो कहते ये बोलवा चालवानी क्रिया ते कहीं आत्मा नहीं, ते तो अचेतन जड़नी रचना छे, देह थी भिन्न अनंत चैतन्य शक्ति संपन्न अरूपी आत्मा छे। उसकी चैतन्य शक्ति कोई छीन नहीं ले सकता, वो कहीं कम नहीं हो सकती। ते आंख वगैरह इंद्रियों थी देखा तो नथी, ते तो अंतरना अति इंद्रिय स्व संवेदन थी ज जणाय छे। और हम तो इंद्रियों के द्वारा तो उसका वर्णन भी सुन रहे हैं, परंतु ये वर्णन सुनकर उसकी महिमा आवे और हम अंतर्मुख हो जाए तो उसका अनुभव हो, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। इसलिए कहते अंतरना अति इंद्रिय स्व संवेदन थी ज लगाया जनाय छे, आवा पोताना आत्मा ने अनादिकाल थी जीवे जाण्यो नथी ने देह मां ज पोतापणू मान्यू छे, तेथी ते चार गतिमां परिभ्रमण करी रह्यो छे। अभी तक हम घूम घूम के मनुष्य पर्याय में आए हैं, उसका अर्थ क्या है, हाँ नहीं पहचाना है, इसलिए परिभ्रमण चालू है। आत्मा शू छे ते जाण्या वगर धर्मी नाम धरावी ने पण देहादिनी क्रिया ने धर्म मानी ने मूल जीव संसार मां ज रखड़े छे। क्या कहते हैं, आत्मा को पहचाना नहीं है, वो क्या है उसको भी नहीं जाना, धर्मी नाम धरावी ने, धर्मी है ही नहीं है, मान लेता है अपने मान लिया, क्योंकि कुछ जो कुछ क्रिया अंगीकार की और मैं बढ़ गया, मैं पंचम गुण स्थानवर्ती हुआ, मैं मुनि हुआ, ऐसा मान लिया उसने। तो कहते धर्मी नाम धरावी ने पण देहादिनी क्रिया ने धर्म मानी ने मूल जीव संसार में च रख रहे थे, यानी देह की क्रिया को धर्म माना, इसलिए मैं धर्मी हुआ ये मानता है। समझ नहीं ना बात, हूँ तो अनंत ज्ञान आनंद स्वरूप छू, देह थी पार, इंद्रियों थी पार, राग थी पार, पाने ने ये उससे भिन्न ही है, रहित है, ज्ञान थी ज स्व संवेद्य छू, ज्ञान तो इसका प्रकट लक्षण है, यानी अपने पास ज्ञान है ये तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, और फिर वो भी वो इंद्रियों के द्वारा माध्यम से तो पर पदार्थ ने जड़ को ही जानने में रुका है, तो यही जो ज्ञान बाहर की यानी उसको जा रहा है वे सो रहा है, उसी को अपने ही ज्ञान से अपने को ही जानना है और कुछ नहीं करना है। पोताना स्व संवेदन वगर बीजा कोई उपाय थी जणाए एवो आत्मा नथी। कितना दान देंगे, कौन कौन से शास्त्र पढ़ेंगे तो अभी आत्मा जानने में, ऐसा पूछते लोग, हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, देखो ये लिस्ट है, अभी हम कौन सा शास्त्र पढ़े तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा।
आपने क्या जवाब दिया? कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ने से आत्मा इसलिए आना ही बंद
हो गया। हम उसका उल्टा अर्थ ले, पढ़ने से नहीं, पढ़ते पढ़ते तो नहीं मिलेगा, पढ़ने से तो आपको दिशा दिखाई देगी, परंतु वो पुस्तक को ही देखते रहेंगे। किसी ने चांद दिखाए वो उधर देखो, और हम उंगली को देखते रहे, इशारा जहाँ किया था वहाँ उस वस्तु को पकड़ना था। तो यहाँ जो हम इतना वर्णन देख रहे हैं, आचार्यों ने हमारे ऊपर करुणा करके ये सब बातें लिख के रखी है, तो ये तो वाचक है शब्द, उस वाच्य वस्तु जो मैं स्वयं हूँ उसको पकड़ना है, वो शब्दों के द्वारा नहीं। उससे तो हमें उस संबंधी का ज्ञान हुआ, भान हुआ, अब अपने ही ज्ञान को अपने में ही स्वसन्मुख स्वसंवेदन करना है। देखो, पोताना स्वसंवेदन वगर बीजा कोई उपाय थी जणा एवो आत्मा नथी। पोते पोता थी ज अनुभवमां आवे एवो आत्मा छे, आवो आत्मा ज आदर करवा योग्य छे, तेने ज पोतानो करीने बहुमान करवा योग्य छे। देहादि पोताथी भिन्न छे ते रूपे आत्मा नथी। अज्ञानी जड़ शरीर ने ज देखे छे ने तेने ज आत्मा माने छे, पण जड़थी भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ने जानतो नथी, तेथी ते बहिरात्मा छे। देहादिथी भिन्न चिदानंद स्वरूप चित यानी चैतन्य और आनंद स्वरूप श्री गुरु बतावे छे, ते स्वरूप ने जे समझे तेने श्री गुरु प्रत्ये बहुमान नो यथार्थ भाव आवे। क्योंकि जिन्होंने हमें ये स्वरूप बताया है ऐसे श्री गुरु के प्रति उनको बहुमान आता है, यहो चिदानंद स्वरूप आत्मा श्री गुरु है मने परम अनुग्रह करीने बताई। इनका महान उपकार है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे ऐसी मेरी बात मुझे बताई। पोताने स्वसंवेदन थाय त्यारे ज्ञानी गुरुनी खरी ओळखाण थाय। गुरु ने तो स्वयं अनुभव कर ही लिया था, अब अन्य जीवों को भी उपदेश दिया है, तो उनकी वाणी की और उनकी महिमा तभी आएंगे जब अपने को हम स्वयं अपने आत्मा को जानेंगे। तो कहते पोताने स्वसंवेदन थाय यानी स्वयं अपना स्वानुभव होगा त्यारे ज्ञानी गुरुनी खरी ओळखाण थाय अने तेमना प्रत्येक खरी भक्ति आवे। एकला शुभराग वड़े पण चिदानंद स्वरूप आत्मा ओळखाय तेवो नथी। एकला शुभराग वड़े का अर्थ क्या है? कौन से शुभराग से नहीं जाना जाता? कोई भी फॉर एग्जांपल दया दान भक्ति और पूजा, वो भी। और मैं ऐसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा बैठा है और ये उसका शब्दात्मक या भाषात्मक जल्पात्मक भी कर रहा है, विकल्पात्मक भी जब तक चल रहा है तब तक अनुभव नहीं है, वह भी शुभराग है, तो उससे नहीं आत्मा जाना जाएगा। तो कहते एकला शुभराग वड़े पण चिदानंद स्वरूप आत्मा ओळखाय तेवो नथी। अने पोताना आत्मा ने ओळख्या वगर सामा आत्मा नी ओळखाण पण थाय नहीं। देखो विकल्प नहीं आते उसकी बात नहीं है, परंतु विकल्प आ रहे हैं और उसको जानने वाला मैं उससे भिन्न हूँ ये भी बात ज्ञानी तो समझेंगे, क्योंकि ज्ञानी को विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे। विकल्पात्मक भूमिका में ज्ञानी भी अपने विकल्पों को जान रहा है, वो कहता भी है मैं ऐसा हूँ, परंतु उस समय वो विकल्प रूप दशा है, वो आत्मानुभव रूप दशा नहीं है, ये उसके ज्ञान में है नहीं। और वो विकल्प किए इसलिए अनुभव हुआ ये भी नहीं, उसको छोड़कर अनुभव होगा।
यहाँ जो लास्ट लाइन आपने पढ़ी, आत्मा
पोताना आत्मा ने ओळख्या वगर सामा आत्मा ने ओळखाण पण थाय नहीं, क्योंकि उसको भी हम शरीर रूप से ही पहचान रहे हैं। सामा आत्मा ने सामने वाले जो ज्ञानी, भले वो गुरु हो के वो अन्य कोई जीव हो, उसको भी हम शरीर रूप से ही पहचान रहे हैं। आप कुछ अलग बताने चाहते
हैं? ऐसा कह रहे हैं
पोताना आत्मा ने ओळख्या वगर, यानी स्वयं जब आत्मानुभवी है, सम्यक दृष्टि है, वही जीव आगे वाला जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं ये नक्की कर सकते हैं। जिसको अपने आत्मा का पता नहीं वो दूसरा सम्यक दृष्टि है कि नहीं कैसा वो कंफर्म करेगा? यानी उसने स्वयं को, जैसा आपने बताया, अपने को जीव स्वरूप माना है तो पर को भी जीव स्वरूप मानेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन यहाँ तो हम कहेंगे कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वही सामने वाले जीव को सम्यक दृष्टि है कि नहीं इसका निर्णय करने में यशस्वी होगा।
सम्यक दृष्टि अंतरात्मा, पोताना आत्मा ने देहादि थी भिन्न एवो जाने छे, हूँ तो अनंत ज्ञान ने आनंद शक्ति थी भरेलो छूं, मारा ज्ञानानंद स्वरूप मा हूँ अचल छूं, मारा ज्ञानानंद स्वरूप थी हूँ कदी च्युत थतो नथी, क्योंकि स्वभाव से कोई तो स्वभाव तो हमेशा बना रहता है, उससे रहित कोई नहीं होगा। आवा ज्ञानानंद स्वरूप ने जे सम्यक श्रद्धा ने ज्ञान थयूं तेना थी दगावा, हवे जगत ने कोई प्रतिकूलता समर्थ नथी। अने प्रतिकूलता के काल में भी उसको अपने भिन्न अस्तित्व का ज्ञान पहचान श्रद्धा बना रहता है, उस समय तो और उसका पुरुषार्थ और ज्यादा प्रबल हो जाता है। ज्ञान स्वरूप ना आश्रय जे सम्यक श्रद्धा ज्ञान थया ते हवे आत्माना ज आश्रय अचल टकी रहे छे, कोई संयोग ना कारणे श्रद्धा ज्ञान चलायमान थता नथी। संयोग के कारण वो चलायमान नहीं होगे, संयोग के कारण वो अभी तक रुका भी नहीं था, वो अपने अपराध से था। अभी उसने सम्यक तो प्राप्त किया, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों नहीं, संयोग उसको नहीं डिगाएंगे। आवास व संवेदन थी आत्माना वास्तविक स्वरूप नी ओळखाण करवी ते बहिरात्मपणाथी छूटवानो ने अंतरात्मा धर्मात्मा थवानो उपाय छे। जीवों को तो ये उपाय उपाय ही नहीं लगता, कुछ करे तो पाएंगे, कुछ करे तो ये क्या करना चाहते हैं, अपने मति कल्पना से करते रहते हैं। करने योग्य तो यही है, क्या कहते हैं, बहिरात्मपणाथी छुटवानो उपाय क्या है, ऐसे स्वसंवेदन से आत्मा को वास्तविक जानना, उसके स्वरूप की पहचान करना। देखो यहाँ एक चित्र बनाया है नेक्स्ट पेज पर 39 पृष्ठ पर, ये बहिरात्मा बताया है, वो इंद्रिय ज्ञान थी जोनार बहिरात्मा। इंद्रिय ज्ञान यानी इंद्रियों के माध्यम से बाह्य में जो उपयोग है जा रहा है वहां तो उसको तो अन्य जो पुद्गल को ही जानेगा, दूसरों के देहों को ही जानेगा, और वो अपने को भी जानेगा तो कैसे जानेगा कि शरीर रूप में हूँ, हाथी हूँ, देह हूँ, मनुष्य हूँ, नारकी। अब जो भेदज्ञानी अंतरात्मा है वो कैसा जान रहा है, तो हूँ एक ज्ञायक भाव छू, यानी उसमें भी वो जड़ जो हाथी का है ना, तो उसमें वो ज्ञायक भाव अलग उसको अपने को अनुभवता है और बाकी जो जड़ भाव वो हूँ नथी, वैसे हर एक में वो चैतन्य रूप अपने को अनुभवता है और बाह्य जड़ 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 जो शरीर है वो तो उससे भिन्न ही है। अब हम आते हैं 40 नंबर के पृष्ठ पर, ये अंतरात्मा थवानो उपाय बताया, अने पछी आत्माना चैतन्य स्वभाव मां ज लीन थईने पोते परमात्मा बनी जाए छे। पूरे मोक्ष मार्ग और परमात्मा होने का पूरा उपाय यही है, अपने ज्ञान आनंद स्वरूप को पहचान कर उसकी दृष्टि उसके सन्मुख होकर अनुभव करना, और बाद में क्या करना, उसी में लीन रहना। आत्मा चैतन्य स्वरूप छे ने आ देह तो जड़ छे, वो अचेतन छे, यह चेतन है तो वो अचेतन है, उसमें जानने की बिल्कुल शक्ति नहीं है, इंद्रियां भी जान नहीं सकती, क्योंकि कोई हम नहीं कह रहे उसका तो प्राण छूट गया, जीव चला गया, तो इंद्रियां तो दिख रही है ना, पहले भी थी अभी भी दिख रही है, तो वो क्यों नहीं जान रही है? जानने वाला तो था वहां, वो तो वही जान रहा था, इंद्रियां कुछ नहीं जान रही। फिर भी उसको इंद्रिय ज्ञान इसलिए कहते हैं, वो इंद्रियों के द्वारा बाहर ही जानने की कोशिश करता है, इसलिए उसका नाम ही इंद्रिय ज्ञान है। तो आत्मा चैतन्य स्वरूप छे ने आ देह तो जड़ छे। आत्मा ने शरीर एक जगह साथे रहेला हुआ छता बनने ना पोत पोता ना भावो जुदा छे, एटले भावे भिन्नता छे। क्या कहते हैं? अभी जीव कहीं से मरकर आया तो उसने, वो तो जीव एक था और उसके कर्म का पिंड जो एक, उसका कारमान शरीर भी था, उसमें तेजस था, उसकी चर्चा नहीं करनी हमको। अब यहाँ क्या हुआ, नया शरीर देह धारण किया, उसके परमाणु का ग्रहण हुआ, वो पर्याप्ति हुई, उसके वैसे रचना हुई, वो सब हम जानते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि दोनों एक ही जगह है, जो जीव के प्रदेश है उन्हीं प्रदेशों में ये औदारिक आदि जो शरीर है वैकिरेक होगा या औदारिक होगा, वो शरीर के परमाणु का ग्रहण होगा, उसका डिपोजिशन होगा, उसकी शरीर की रचना होगी। जहाँ जीव है वहीं पर उसका कर्म भी है और वहीं पर ये शरीर की रचना भी होगी। एक ही स्पेस में, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक साथ है एक जगह रहेला हुआ छता बनने ना पोत पोता ना भाव जुदा छे, क्योंकि पदार्थ ही भिन्न है, एक जीव वस्तु जुदी है, ये शरीर के परमाणु भिन्न है, दोनों के गुण अलग है, उनके पर्याय अलग है, उनके भाव जिसको कहेंगे भिन्न है, इटले भावे भिन्नता, भावे ने भाव की अपेक्षा तो भिन्नता है ही है, पृथक उनका जो है ना प्रदेश, पृथक यानी अन्य जगह नहीं है, एक ही जगह में, आकाश के एक ही क्षेत्र में जीव के भी प्रदेश है, वहीं पर ये शरीर के पुद्गल परमाणु भी है, परंतु दोनों के भाव भिन्न भिन्न है। जेम एक कसाई जे वो जीव अने बीजो सज्जन ए बन्ने एक घर में भेगा रहा होए पन बन्ने ना भावो जुदा छे, ते मां लोक मां जड़ शरीर आदि अने आत्मा एक क्षेत्र रहा हुआ छता बन्ने ना भावो तद्दन जुदा छे। आत्मा पोताना ज्ञान आनंद वगैरह भाव में रहो छे ने कर्म शरीर आदि तो पोताना अजीव जड़ भाव में रहा छे, बन्ने मां एकता कदी थई ज नथी, एने थई शकती ज नथी। जड़ तो जड़ स्वरूपे कायम रहेगा अनादि अनंत, और ये तो चेतन स्वरूप रहेगा, यही उसकी शुद्धता है। मैंने बताया ना, शुद्ध के भी तीन अपेक्षा से बातें कहने में आती है। अभी अत्यंत भिन्नता हुआ छता मूल आत्मा जड़ती भिन्न पोताना स्वरूप ने जानतो नथी, ने देहादिक ज हूँ छू एम मानी ने मिथ्या भाव में प्रवर्ते छे, तेज संसार दुख नु कारण छे। जब तक ऐसे ऐसे भाव होते हैं तो निमित्त तरीके ऐसे ऐसे कर्म मिथ्या रूपी कर्म और अन्य भी कर्म का बंध होता रहता है, और फिर उसका उदय भी चलता रहता है, तो उदय बंध की परंपरा ये तो विशेष सर्कल चालू रहता है, दुष्ट चक्र। शुद्ध ज्ञान ने आनंद सिवाय बीजू बधु मारा स्वरूप थी बाह्य छे। पहली गाथा में नक्की किया था सिद्धों को नमस्कार करके, जो सिद्ध में है वो मेरे में है, जो सिद्ध में नहीं है वो मेरे में नहीं है। यहाँ क्या कहा कि शुद्ध ज्ञान ने आनंद सिवाय बीजू बधुई मारा स्वरूप थी बाह्य छे, एम अंतरात्मा पोताना आत्मा ने समस्त प्रभावोती भिन्न शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपे अनुभवे छे। पहले नक्की करेंगे हम अपने ही ज्ञान के द्वारा निर्णय में, और फिर उसी का लक्ष्य करके उसका अनुभव भी करेंगे। पर्याय मां रागादि उपाधि भावो छे, क्या कहा, पर्याय में है वो, उसको जानेगा कि नहीं जानेगा, बिल्कुल जानेगा। तो पर्याय मां रागादि उपाधि भावो छे तेने जाने तो छे, पण ते रागादि रूप अशुद्ध स्वरूप ज आत्मा थई गयो एम नथी मानता। अंतरात्मा की बात है, अंतरात्मा आत्मा उस रूप, पूरा आत्मा उस रूप हुआ ऐसा नहीं मानता है। हाँ, उसके पर्याय में अभी है रागा भी है, क्योंकि पूरा स्वभाव जो अनंत शक्ति संपन्न स्वभाव, पूरे पूरा पर्याय कोई भी क्यों ना हो, पूरा उसका स्वभाव उसके पीछे पड़ा है। पर्याय पर्याय तो क्षणिक है, इसलिए कहते पर्याय ऊपर ऊपर तरती है, ऊपर तरती है तो केवल आउटर सरफेस में है और अंदर नहीं, वो इसका अर्थ नहीं है। परंतु भाव की अपेक्षा हम देखेंगे तो पर्याय तो उसके सामने कुछ नहीं। गुणों का परिपूर्ण सामर्थ्य एक बाजू है, वो अनंत शक्ति वाला है, और पर्याय तो एक समय की है। तो कहते पर्याय मा है, रागादि विकार है, उपाधि भाव है, उसका वो जानता भी है, परंतु आत्मा उस रूप हो गया, अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं मानता। समझ में आती है बात? हाँ। राग थी पण पार ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा छे, तेने अंतरदृष्टि थी देखे छे, ते अंतरात्मा छे। अभी उसको कोई राग आया, कोई कभी भक्ति का राग आया, और कभी कोई किसी को जैसे क्रोध करने का भाव आया, वो उसका ज्ञान का गेय तरीके जानता है, उसका स्वामी नहीं हो रहा है, अपने में विभाव है उसको जानता है, फिर भी मैं पूरा उस रूप हुआ है ऐसा नहीं मानता, ये कहना चाहिए। यानी किसी राग से मैं बढ़ गया हूँ, अभी भक्ति क्या है, इतनी भक्ति कर रहे, मैं भक्ति से गा रहा हूँ, उसका अहोभाव उसको नहीं, उसके अहमपना और अहोभाव आदर भाव स्वभाव की सामर्थ्य में पड़ा है। उसको पर्याय के संबंध में भले उसने बहुत शास्त्र का जानकार भी हो जाए, या कोई अन्य बाहर में जैसे मुनि के योग्य जो कठिन कठिन तप भी करे, उसमें उसका अहोभाव नहीं है, उसमें अहम बुद्धि नहीं है, हो रहे उसके ज्ञान का गेय है, उसके कारण मैं बड़ा हूँ ऐसा, क्योंकि वो संबंध पूर्ण अनंतानंत शक्ति संपन्न मैं हूँ, उसको अनुभव करके उसने जाना है। अभी उसके उसके सामने पर्याय की कोई कीमत नहीं है। अरे भाई, तारा आत्मानु वास्तविक स्वरूप शू छे, तेने एक बार जान तो खरो। देखो ज्ञानी की कैसी करुणा थे। अरे एक बार जब मम्मी कहते हैं हरि की, आप नहीं कहते बच्चों को, अरे चक्कर तो देखो। बच्चे तैयार नहीं होते, कोई हमने बहुत अच्छा पदार्थ बनाया है, अरे जरा खाके देखो, जरा चखे देखो, कितना कितना आग्रह करते हैं। वैसे ज्ञानी कहते एक बार जान तो खरो, आ मनुष्य देह तो स्मशान मां बड़ी ने भस्म थे। तो कितनी बार जल गए स्मशान में जाकर? एक बार भी नहीं। कौन से? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जानने की पर्याय भी चल रही है और राग के भी चल रही है। हाँ, जरिए आपको मान लेते, आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा आया उसी समय आप जान भी रहे कि नहीं? जाना किसने? ज्ञान नहीं तो जाना,
दो भिन्न भिन्न गुण है ना।
हाँ, दोनों का कार्य अलग है, परंतु ये जान अज्ञानी तो राग में, उसको तो ज्ञान की सेपरेट है, इसका पता ही नहीं है, मैं ही राग रूप हुआ इस समय, जान रहा है। हाँ,
मुख्य तो अपने स्वभाव को ही करना है, जो अपना सामर्थ्य है, स्वभाव और सामर्थ्य एक ही बात है, उसी को मुख्य करना है। लेकिन हम इतने उसमें गलत भ्रमणा कर रहे हैं कि रात को ही अपन मुख्य करके ऐसा करना नहीं करना, इस तरफ अपना उपयोग जाता है, तो उसी को करना है, लेकिन उस समय वहाँ राग है ही नहीं, ऐसी मान्यता भी गलत है। राग है लेकिन उसको गौण करके
उद्गल का इसलिए कहा क्योंकि उसके कर्म उपाधि कहा ना, कर्म के उदय में होने वाले, हमने दो खाते खोले थे, कर्म के उदय में होते तो कर्म का है कह देंगे, उस अपेक्षा पुद्गल का नहीं, कर्म का। वो देखो अपेक्षावश जोर किस पर देना है, ये ज्ञानी के अभिप्राय पर निर्भर होता है। तो वहां तो राग से बिल्कुल भिन्नता है ना, वो मेरा है ही नहीं, कमजोरी मेरे में कहा है, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, वहां पूरी सामर्थ्य में मैं अपना स्थापित किया, पूरी सामर्थ्य। तो कहते वो तो राग है तो हो रहा है, तो मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। वो तो क्या है ये, उससे भेद ज्ञान करने के लिए अपना नाता छुड़ाना है तो हमारा है ही नहीं। जैसे किसी का हम बहुत बार उदाहरण देते ना, बेटा नालायक निकला, कर्जा कर रहा है बाप के नाम पर, तो वो तो पेपर में अनाउंस कर देते हैं, अमुक अमुक ये मेरा बेटा आज से मेरा नहीं है। तो वहाँ वो राग के साथ, क्योंकि अभी तक अनादि से क्या भूल की, शरीर को तो मैं माना ही, राग ही मैं राग रूप हुआ हूँ ऐसा माना, ये उसकी भूल है। अभी उसके साथ इतना उसको जैसे वो नाता तोड़ना है उसका, तो वो पुद्गल का है, मेरा है ही नहीं है। परंतु वही
पुद्गल के निमित्त से हो रहा है, पुद्गल को देखते देखते उसके तरफ
श्रद्धा की अपेक्षा लेना, अपेक्षा
इसलिए वो राग उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो मेरा नहीं है।
प्रवचन सार में वही कहेंगे आचार्य, आचार्य भी वही है, तुमका न अपराध है। उस समय जीव राग है, रागी भी नहीं है, राग है। जिस समय क्रोध कर रहा है वह जीव स्वयं क्रोध है, क्योंकि हाँ ऐसा देखो, ज्ञान की अपेक्षा और उसी में जानने के बाद उसमें हमको ये अप्लाई करना है। पहले मेरा है ही नहीं तो चलो तू राग से भिन्न ही है, तो निश्चयवासी हो जाता है। पहले जानना है, ज्ञान का ज्ञेय तो सब कुछ है, वो अपने को भी जानेगा, स्वभाव सामर्थ्य को भी जानता है, पर्याय का अपराध को भी जान रहा है, पर पदार्थों को भी जान रहा है, सबको जान रहा है। ज्ञान तो सबको जैसा है वैसा जानेगा, और पर्याय कुछ वस्तु से अलग बात तो है ही नहीं है। तो पर्याय में है तो जीव उस रूप हुआ है अभी ऐसा कहेगा, परंतु वो पर्याय की अपेक्षा है। परंतु अभी श्रद्धा की अपेक्षा, श्रद्धा में मैं किसमें स्थापित करना है, सामर्थ्य में, जो परिपूर्ण होता है, अनंत वैभव है जो अपना। तो वहां तो पर्याय से भी नाता छोड़ दिया है, क्योंकि अभी सब कुछ अभेद एक करके हम देख रहे, हम पर्याय को गौण कर दिया, वो पर्याय ही नहीं के परिपूर्ण है, कि कुछ नहीं देख रहे हम। पर्याय है कि नहीं, होगी वो तो परिणामशीलता द्रव्य का स्वभाव है, वो स्वभाव में आ गई। परिणामशीलता हर समय पर्याय रूप परिणमना, ये स्वभाव में आ गया है। वो कौन से पर्याय रूप, वो हम कौन सी के देखे, तो हमारी क्यूरियोसिटी क्या, हम उसको भिन्न करना चाहते हैं। उसको भिन्न करके क्या जान रहा है, कैसे जान रहा है, कब का जान रहा है, वो सब छोड़ दो। जानन उसका स्वभाव आ गया ना उसमें, अकेला कुटस्थ है ऐसा भी नहीं है, वो तो परिणाम ना उसका स्वभाव है, वो भी स्वभाव में इंक्लूड कर देना है। तो ऐसा मैं परिपूर्ण हूं, तो अभी वो पर्याय की बात कहाँ आई, ख्याल में आई ना बात, वो अधूरी है क्या, वो राग वाली है, तो हमारे वो दृष्टि में ही नहीं है। तो उसके वगर ऐसा भी कहेंगे, पर्याय वगर नहीं, भेद वगर नो, अभेद आत्मा लेना। क्योंकि वहाँ पूरी सामर्थ्य ली है, और पर्यायों को तो उसी में अभेद करके वो गौण करके, अभी उसका भेद नहीं करना है हमको, अलग अलग नहीं बताना है। जो कुछ है वो तो द्रव्य के अंतर्गत जो कुछ हो रहा है वो होने दो, हम उसको नहीं देख रहे, हम तो पूरे सामर्थ्य को देख रहे हैं। एक एक पर्याय के पीछे परिपूर्ण, वो त्रिकाली भगवान आत्मा जिसको कहेंगे, उसके सामने पर्याय की क्या कथा है, वो तो हम उसको भेद कर करके नहीं जान रहे। वो है कि नहीं, वो हमने जान लिया पहले, हाँ वो द्रव्य का स्वरूप है परिणमना, वो उसके स्वभाव के अंतर्गत आ गया था। देखो ज्ञान की अपेक्षा स्व किसमें स्थापित करना, और श्रद्धा की अपेक्षा इसको दृष्टि का विषय है, पर दृष्टि के विषय में ज्ञान को वो तो ऐसे उड़ा नहीं देना है, जैसा है वैसा अगर ज्ञान नक्की नहीं करेगा, नहीं तो ज्ञान खोटा हो जाएगा, अकेले दृष्टि नहीं चलती है। दृष्टि में तो मात्र स्व की मुख्यता होती है, और उसी समय ज्ञान का भी कार्य अपना अपना चलता है, नहीं तो दर्शन का कार्य करने दो, अभी तो हम ज्ञान की बात ही नहीं करेंगे, ऐसी नहीं है। हाँ, और उसका बैलेंस नहीं खोना चाहिए सर्वांग। हाँ, यहाँ क्या होता है, कोई विशिष्ट गाथा है या कोई विशिष्ट शास्त्र है तो उसकी अपेक्षाएं अलग होती है, तो वहां उसी अपेक्षा से कथन होगा, उसकी अपेक्षा से कथन, क्योंकि कथन ये तो कमजोरी है ना कथन की, एट ए टाइम कोई एक अपेक्षा से बात कह सकते हैं, परंतु वो दूसरा जो कथन है, दूसरी जो अपेक्षा है, वो अपने ख्याल में होनी चाहिए। सर्वथा कहो या निरपेक्ष कहो, ऐसा नहीं होता। नयों की बात हमने देखते हैं ना, हम किसी नए से बात कर रहे हैं तो अन्य नए या प्रमाण से जो वस्तु है उसका ज्ञान हमारे यानी ख्याल में होना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बात खोटी हो जाएगी, एकांत हो जाएगा, एकांत हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है।
गुरुदेव हमेशा रेफरेंसेस बहुत देते हैं अलग अलग शास्त्र में, आपकी मान्यता एकांग नहीं।
हाँ एकांग नहीं होगा, उन्होंने वो प्रवचन सार के प्रवचन में बहुत बार बताया कि जीवों को पहले प्रवचन सार पढ़ना चाहिए, बाद में समय सार पढ़ो करके। हाँ उन्होंने स्वयं बताया। अभी जिसको मालूम है उसको तो कोई भ्रष्ट होने का सवाल नहीं है, परंतु जो अभी कच्चा है तो वो तो कहीं विपरीत अर्थ कर लेता है अपनी बुद्धि से। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्त सनम सदा दीत हो। मिली भाई।
नमो निर्दानम, नमो सिद्धानम, नमो